बच्चों में गुर्दे की नाली की बंदिश, तो जनाब बताइए कि ये दरअसल क्या चीज़ है डॉक्टर साहब?
देखिए, बच्चों में गुर्दे की नाली की जो बंदिश है वो तो एक, वो हम कह रहे हैं कि एक छोटी सी बात है कि गुर्दे से जहाँ से वो नाली निकल रही होती है उस हिस्से को पेल्विस कहते हैं, और आगे जो चल के वो यूट्रस होती है और उसके दरमियान में एक जंक्शन सा बनता है
जी।
तो बाज़ बच्चों में वो जो जंक्शन है वो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, एक तरह का जो है वो छोटा तंग रह जाती है वो नाली। तो इस पूरी चीज़ को जो है वो समझाने के लिए शुरू से मैं बात करूंगा, एक बैकग्राउंड उसका मैं ले लूँ। तो ये देखें, हमारा जो पूरा इंसानी जिस्म है, इसके मुख्तलिफ सिस्टम हैं, मुख्तलिफ जो इसमें निज़ाम काम कर रहे हैं, ये सारे एक दूसरे से मुंसलिक होते हैं, एक दूसरे की इनको ज़रूरत होती है, और इसमें से किसी भी निज़ाम में कोई मसला बनता है तो उसके असरात दूसरे निज़ाम पर मुरतब हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम सांस लेते हैं, हमारे फेफड़ों में जाता है, वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकलती है, ऑक्सीजन खून में शामिल होती है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती है, और इसी तरह जब खून को साफ़ करने की ज़रूरत होती है, हम मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें खाते हैं उसके तज़िए तहलील के लिए, वो काम हमारे गुर्दों का होता है। अब गुर्दे हमारे जिस्म में बड़ा अहम निज़ाम अखराज जो है इसका एक बड़ा अहम हिस्सा है, और ख़ास तौर पे बच्चों में जब कोई किसी भी किस्म का कोई मसला पेश आता है और अगर उसकी बरवक्त तशीस नहीं होती तो वो मुख्तलिफ तरह की पेचीदगियों का बायस बनता है, क्योंकि वो बच्चे शुरू में वो सारे सिस्टम डेवलप हो रहे होते हैं, बढ़ोतरी वाली हालत में होता है,
तो
बिल्कुल नशोनुमा पा रहे होते हैं, तो अगर वहाँ पे कोई भी ख़ास तरह का कोई सिस्टम वो पूरी अपनी जो असल उसकी हालत है उसके मुताबिक वो काम नहीं कर पा रहा तो उसके असरात दूसरे सिस्टम जो हैं, दूसरे निज़ाम उन पर भी मुरतब होते हैं, तो वो जो सारे बच्चे की नशोनुमा है उसकी ज़हनी जिस्मानी वो उस पे बुरे असरात मुरतब होने का खदशा होता है। अब ये जो गुर्दे हैं ये हमारे जिस्म में दो होते हैं, और दो गुर्दे और इसकी शक्ल भी जो है वो कभी लोबिया का दाना देखे तो इस तरह की वो तस्वीर भी आएगी, उसमें उसकी शक्ल भी दिखाई गई होगी। तो अब दो गुर्दों में से फिर वो दो नालियां निकलती हैं, यूरेटर जो है वो नीचे की तरफ आते हुए वो ब्लैडर में जमा, ब्लैडर में पेशाब वगैरह जो उसके एक्सक्रीशन वगैरह होती है कनेक्ट हो रही होती हैं, वहाँ पे आके वो दोनों मिलती हैं, तो वहाँ पे जब फिर स्फिंक्टर मसल वगैरह जब हमें हाजित होती है तो पेशाब का इखराज होता है। तो अब होता ये है कि ये मुख्तलिफ तरह के जो है गुर्दे हमारे हमारे जिस्म में काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, इनका जो सबसे अहम काम होता है वो खून की सफाई, और उसके बाद जो है वो इसमें खून में जो का जो वॉल्यूम होता है उसमें उसको इसने एक तरह की उसकी मिकदार को मेंटेन रखना होता है। अब इस सारे इसके अलावा भी जो इसके काम होते हैं गुर्दों के, वो जिस्म के जो खून में पीएच वैल्यू होती है, जिस मसल कितना उसको एसिडिक होना चाहिए, उस माहौल को कितना बेसिक होना चाहिए, वो भी इन्हीं गुर्दों की मरहूने मिनत होता है, या फिर इसके अलावा भी दूसरे मसल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, उसके वॉल्यूम को कंट्रोल करना। हमारे खून में बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के आयंस होते हैं, जिस तरह कैल्शियम, पोटाशियम है, क्लोराइड है,
खास मादे होते हैं।
जी बिल्कुल, ये मुख्तलिफ जो अफाल हम सर अंजाम दे रहे होते हैं तो में इनका इस्तेमाल होता है। अगर खुदा न खास्ता बाज जगहों पे इनकी ज्यादती होती है तो फिर वो क्रिस्टल्स वगैरह की शक्ल में बनते हैं, तो उनका भी नुकसान होता है, और इनको किस मिकदार में होना चाहिए हमारे जिस्म में वो भी गुर्दों की ही मरहूने मिनत होता है। फिर गुर्दों का एक बहुत अहम काम होता है कि हार्मोन जो हैं वो बाज बड़े अहम किस्म के जो हार्मोन हैं वो ये बनाते हैं, मिसाल के तौर पर कैल्सिट्रोल है, वो एक विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है। अब विटामिन डी की हम पिछले प्रोग्राम में बात करते रहे कि विटामिन डी हमारे जिस्म में बड़ी अहमियत का हामिल होता है, वो कैल्शियम को जज्ब करने में विटामिन डी मदद कर रहा होता है, और हमारी हड्डियों की जो मजबूती है वो कैल्शियम की मरहूने मिनत होती है। अगर खुदा न खास्ता गुर्दे से वो चीज़ जो है वो सही वो काम सर अंजाम नहीं दे रही, विटामिन डी जो है वो नहीं बन पा रहा, तो फिर कैल्शियम जज्ब नहीं होगी, हमारी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर रह जाएंगी। फिर इसके अलावा भी जो है वो दूसरे कुछ दूसरे हारमोन्स हैं जो हमारे जिस्म में जो खून के सुर्ख जर्रात हैं वो बनाते हैं, एरिथ्रोपोइटिन اس کو کہتے ہیں, تو وہ بھی گردوں کی. اور سب سے اہم جو چیز ہے کہ اخراج جو ہے مختلف جو ویسٹ پروڈکٹ ہیں جن کی ہمارے جسم کو ضرورت نہیں ہے, ان کا ہم مختلف طرح کی جو میڈیسن وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کے بھی تجزیہ تحلیل جو ہے وہ بھی گردوں پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بہت یہ ضروری بات ہوتی ہے کہ ہم جو بھی چیزیں اگر کوئی خوراک میں ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جو ہمارے گردوں کے لیے نقصان دہ ہیں تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. کسی میڈیسن کو ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اب ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ میڈیسن جو ہے گردوں کے لیے نقصان دہ ہے لیکن ہماری مجبوری ہوتی ہے اس کو کھانا, تو وہ اس کا بھی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے پھر اس کے بعض دوائیوں کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ پانی کا اپنے استعمال زیادہ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو اس کے فاضل مادے ہوتے ہیں وہ گردوں سے نکلتے رہیں. تو یہ تو ہو گیا اس کا ایک طرح کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ. اب گردوں سے جو ایک نالی نکلتی ہے, اب گردے کا اصل جو یہ سارا یورینری سسٹم کا جو اصل کام ہوتا ہے وہ گردے سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. جو باقی اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ گزرگاہیں ہوتی ہیں, مثلا یوریٹر جو ہے وہ ایک گزرگاہ ہے, پھر بلیڈر میں اس کو ایک خاص مدت کے لیے اس نے روک کے رکھنا ہوتا ہے, ذخیرہ کرنا ہوتا ہے, پھر جو ہے وہ پیشاب کا اخراج ہو جاتا ہے. تو اصل کام اس میں گردے ہی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو گردوں کی جب وہاں پیلویس اور یوریٹر اس کا جو جہاں پہ ایک کنیکشن ہوتا ہے وہاں پہ تصویر آئے گی تو وہ بہتر طور پہ اس کی جو ہے وہ نشاندہی ہو جائے گی, اور عام ناظرین کے لیے بھی جو ہے وہ بہتر طور پر اس کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. تو وہاں پہ جب ایک طرح کی تنگی آتی ہے, نیرونگ ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ گردے میں جو وہ پیلوس والا حصہ ہے وہاں پہ پانی جمع, وہ جو پیشاب وہاں سے نکلنا ہوتا ہے یا اضافی جو ہے چیزیں وہ وہاں سے اس مقدار میں نہیں نکل پا رہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ جو ہے جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس کنڈیشن کو ہم میڈیکل کے اصطلاح میں ہائیڈرونیفروسس کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر اس کی مختلف طرح کی جو ہیں علامات ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں.
بالکل, یعنی آپ کو جو ہے وہ پیشاب پاس کرنے میں کسی بھی قسم کی دقت اس جگہ پر ہو تو یعنی یہ مسئلہ پیش آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی علامتوں کی طرف اشارہ کیجئے کہ کس طرح کی علامتیں ہم دیکھیں گے ایک بچے کے اندر جب اس میں مسئلہ پیش آئے گا.
جب اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں جو بعض بچوں میں ہوتا ہے, کیونکہ یہ والا مسئلہ اب جو چھوٹے بچوں میں بھی ہوتا ہے, تھوڑے سے مسئلہ بڑے میں بھی جو یا ٹین ایج میں بھی جا کے جو ہے بعض لوگوں کو جن کو پتہ نہیں چلتا. اب سائنس کافی ترقی کر گئی ہے تو اس کی نشاندہی تھوڑی سی جلدی ہو جاتی ہے, یا ہم مثال لے لیں کہ کسی جگہ پہ اتنی آگاہی نہیں ہے کسی خاص معاشرے میں یا کسی کو پتہ نہیں چلا تو تھوڑا سا مسئلہ وہ حصہ پاس ہو رہا ہے, پوری طرح اس میں ابسٹرکشن نہیں ہے, اس کی علامات پوری طرح جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہی. تو اس کے ساتھ جو اگر علامات کا تھوڑا بہت ظہور ہوتا ہے تو اس میں بعض لوگوں کو جو ہے وہ کمر کے پچھلے حصے میں تکلیف, پہلو میں جو مسئلہ بنتا ہے, پیٹ کے نچلے حصے کی طرف ایک سرایت کرتا ہوا درد جو ہے, بالکل اس طرح ہوگا, یا پیشاب کے ساتھ ہلکا ہلکا جو خون آنا مطلب یا اس کی رنگت جو ہے خون کی تبدیل ہونا, پیشاب کرتے ہوئے تکلیف ہونا, بار بار مثلا پیشاب کا آنا, اس طرح کی جو علامات ہیں اس کی چیدہ چیدہ, اور ساتھ درد کے ساتھ ایک متلی سی الٹی کسی کیفیت, اگر ساتھ یورینری ٹریک انفیکشن بھی ہو جائے تو کسی بھی انفیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ ساتھ جو ہے بخار کسی اس کی کہیں پہ بھی انفیکشن ہو تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بخار جو ہے وہ ساتھ ہو جاتا ہے.
ڈاکٹر صاحب ہم چلتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف, ایسا کون سا مسئلہ پیش آتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس مشکل میں مبتلا ہوتا ہے؟
دیکھیں جب اس کی واضح طور پہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ بالکل اسی وجہ سے جو ہے یہ مسئلہ سامنے آتا ہے, اب وہ شک کی بنیاد پہ یا مختلف جو اندازے لگائے جاتے ہیں یا چانس جو ہو سکتا ہے, جب بچے ماں کے پیٹ میں بچے کی نشوونما ہو رہی ہوتی ہے تو اس دوران جب یہ نالی بن رہی ہوتی ہے تو ایک وجہ تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس نالی کے یا جب یہ نظام اخراج کا سارا یہ سب کچھ تشکیل پا رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ نالی چھوٹی رہ جاتی ہے قدرتی طور پر, یا پھر وہاں پہ کوئی انفیکشن وغیرہ ہوئی, انفیکشن کے جو ہے اس کے سیکنڈری ثانوی اثرات کی وجہ سے وہاں پہ کوئی سکار ٹیشوز وغیرہ وہ بنتے ہیں, وہ کوئی زخم ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے آ کے جو ہے اس کو شارٹ کر دیا, یا مثلا بعض بچوں کے شروع میں جو ہے وہ کوئی پتھری وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں جو پوری طرح ان کا اخراج نظام اخراج وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا, کیلشیم کے ذرات جو ہے آکسیٹ اس طرح کی چیزیں وہ وہاں پہ جمع ہو جاتی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس طرح کے جو ہے وہ مسئلے سامنے آتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ نالی نیچے کی طرف آ رہی ہوتی ہے یوریٹر، اس کے ساتھ جو ہے وہ شریان بھی ہوتی ہے، شریان وریدیں وہ بھی جو گردے کو کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو بعض کا تو اس شریان کا وہاں سے جو نکلنا ایک طرح کا ایسا وہاں پہ وہ کٹ سا جیسے وہ بنتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس کا دباؤ جو خون کی ترسیل ہو رہی ہوتی ہے مقدار زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی وہاں پہ دباؤ آ سکتا ہے یہ مسئلہ عام طور پہ وہ قدرے تھوڑے سے بڑے بچوں میں سامنے آتا ہے۔
صحیح.
اب اس میں جو سب سے اہم بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے معاشرے میں، کوئی ہزار میں سے شاید کسی ایک بچے کو یہ مسئلہ ہو، لیکن جو سب سے اہم بات ہے اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، اگر ہمیں ہمارے معاشرے میں اس چیز کی آگاہی نہیں ہوگی کہ اس طرح کا مسئلہ بچوں کو درپیش ہو سکتا ہے، اور اسی ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پھر جب ہائیڈرونیفروسس ہوتی ہے وہاں پہ وہ پیشاب وغیرہ جمع ہوتا ہے وہ پوری طرح جو یوریٹر میں نیچے نہیں آتا، تو اس کے ساتھ وہ ایک بچہ تکلیف کا بے چین سا رہے گا، یا اس میں بخار اگر انفیکشن ہو گیا تو ساتھ بخار رہتا ہے، تو ہمارا دھیان جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا۔ یہ بھی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں کہ شروع میں جن فیملیز میں اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں یا جن فیملیز میں گردوں کی تکالیف ہوتی ہیں تو جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کو الٹرا ساؤنڈ کروا لینا چاہیے تاکہ اس نالی کی جو ہے وہ کنڈیشن کا پتہ چلے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں اس کنڈیشن کا پتہ نہیں چلتا تو یہ ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گردہ اپنا فنکشن جو ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، گردہ ڈیمیج خراب ہونا شروع ہوتا رہتا ہے آہستہ آہستہ، تو پھر ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ گردہ وہ ایسی حالت میں اس کو نکالنا پڑتا ہے، وہ بالکل ایک انفیکشن کی جگہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آگاہی ہو اور بر وقت جو ہے اس کی تشخیص دے کے، اگر کیونکہ اگر بر وقت اس کی تشخیص ہو جاتی ہے تو پھر کچھ مہینوں کے بعد اس کنڈیشن پہ منحصر ہوتا ہے کہ کتنے مہینوں کے بعد جو ہے اس کو الٹرا ساؤنڈ کیا جانا چاہیے اس بچے کا۔ تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچوں کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں کہ مثلا 3 ماہ کے بعد، کسی کا 6 ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد، اس کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چلتا رہتا ہے کہ اب اس کی جو ہے کتنی نالی کھلی ہوئی ہے، کتنا اس کا جو یورین ہے وہاں سے پاس ہو رہا ہے۔ اگر وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ تر بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر نالی باریک بھی ہے تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے،
اس کا گردن
بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جن بچوں میں بہتری نہیں آتی تو ان کا پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ پھر لیکن اس کے ساتھ بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ نظر رکھی جائے کہ خدا نہ خواستہ گردہ جو ہے وہ خراب نہ ہو رہا ہو۔
بالکل، ایک گاڑی کے پرزے کی طرح جب صحیح طرح کام نہ کرے تو اس میں زنگ لگ جاتا ہے۔ آپ نے گفتگو میں اشارہ کیا کہ فیملی میں اگر ایسا کوئی کیس ہے، بڑوں میں دیکھا جائے کہ ان کو پتھری وغیرہ کی شکایت ہے، تو میرے خیال سے بہت سے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا، بڑے افراد کے گردوں میں پتھری کا جو مسئلہ رہتا ہے، اس کی وجوہات کے بارے میں بتائیے ہمیں، کس طرح سے ہے یہ؟
دیکھیں، جب اس کی وجہ جو ہے یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہم خوراک لیتے ہیں، جو ہماری خوراک جو ہے اس کے ذرات خون میں جاتے ہیں، خون کو جب صفائی کا اس کا فلٹریشن کا کام ہوتا ہے وہ گردوں نے انجام دینا ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کیلشیم کے، آکسلیٹ کے، اس طرح کے جو ذرات ہیں وہ خون میں زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، اور اگر ایک تو زیادہ مقدار میں پائے جائیں اور پھر گردوں میں جا کے ان میں کرسٹل بننے کی، اگر یہی جو ذرات ہیں آپ اس میں جمع ہونا شروع ہو جائیں، کرسٹل بننا شروع ہو جائیں، تو پھر وہ پتھری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان اجزاء کا، یہ جتنے بھی منرلز ہیں، ان کا خون میں ان کی مقدار کا زیادہ ہونا، اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو ایسے جسم میں انزائمز ہوتے ہیں یا ایسے مادے ہوتے ہیں جو ان کو کرسٹل بننے سے روکتے ہیں، ان مواد کی جو ہے اگر وہ جسم میں کمی ہو تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ پتھری بنتی ہے۔ تو بڑوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب پتھری تو گردے میں ہو، کسی ایک جگہ پہ ہو، اس وقت تو تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ جب وہ پتھری کسی بھی جگہ سے موو کرتی ہے نیچے یوریٹر میں، نیچے کی طرف آتی، تو اس وقت بہت شدید قسم کا درد ہوتا ہے، اور اس کی علامات، اس درد کی بھی علامات جو ہیں وہ بڑی شدید قسم کی ہوتی ہیں، نیچے پیٹ کی طرف ایک شدید قسم کا سرایت کرتا ہوا درد، بعض لوگوں میں में कमर में दर्द होता है, बाज का पहलू में, फिर दर्द के साथ मतली सी उल्टी आने वाली जो है वो
कैफियत रहती है,
कैफियत होती है। और बाज लोगों को अगर साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो पथरी के मूव करने से या वैसे ही वहाँ पे पड़े रहने से, तो उनमें साथ बुखार की सी कैफियत वो भी सामने आती है। और ये इस तरह के जो बड़ों में ये जो मसला पाया जाता है वो ऐसे अफराद में ज़्यादा होता है जिनकी, जिस तरह हमने बात की कि बाज़ खानदानों में फैमिली हिस्ट्री बाज़ लोगों की ऐसी होती है, बाज़ लोगों की खुराक वो ठीक नहीं होती, उनकी खुराक अपनी खुराक पे पूरी तरह तवज्जो नहीं होती, बाज़ लोग जो मोटापे का शिकार रहते हैं, या बाज़ लोगों को ये होता है कि कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की निज़ामी निज़ाम की मखसूस बीमारियों में मुबतला होते हैं जिसकी वजह से इस तरह के मवाद जो हैं वो जिसमें ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाते हैं। या बाज़ वक़्त ये भी होता है कि कुछ लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जो डिहाइड्रेशन का शिकार रहते हैं, यानी वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो जो बजाय इसके कि पानी वो गुर्दे से फिल्टर हो वो सारा खून वो पसीने की वजह से जो है वो डिहाइड्रेट हो रहा होता है, बाज़ लोगों को वैसे पानी कम पीने की आदत होती है,
तो ये मसाइल सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, गुफ्तगू में आपने इशारा किया कि हमें अल्ट्रासाउंड जो है वो करवाना चाहिए और जो है वो ट्रिगर करना चाहिए बच्चे को कि कहीं ऐसा कोई मसला हो या ना हो, अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए या नहीं। और साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहूंगी कि इसमें कोई नुकसान बच्चे को पेश नहीं आएंगे अल्ट्रासाउंड की वजह से?
देखें, जिस तरह हमने पहले वक्फे से पहले बात की कि बाज़ अगर खानदानों में इसका मसला ज़्यादा है, ये गुर्दों की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा हैं, तो उनके बच्चों को उनके लिए ज़रूरी है कि वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जो है वो पता लगा लें। अब हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारा जो मुआशरा है उसमें बहुत ज़्यादा एक समाजी जो है वो एक तरह का गैप है। बाज़ इलाकों में तो ये होता है कि जो पढ़े लिखे अफराद हैं या मुआशी तौर पर मजबूत हैं या अच्छे शहरों में रह रहे हैं, वहाँ पे तो जैसी हामलगी होती है उस वहाँ से लेके स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो तीनों ट्रिमेस्टर जो हैं उसमें होते हैं, तो उसके ज़रिए भी पता चल जाता है जब आप अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं माँ के पेट में जब बच्चा होता है, तो वहाँ पे भी इसको डायग्नोज किया जाता है कि ये कंडीशन है, यानी इसके लिए अलग से अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे इलाकों में जहाँ पे वो लोग नहीं जाते दौरान हामलगी, उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया और उनके ख़ानदानों में इस तरह के मसाइल हैं, तो उनको चाहिए कि अगर कोई इस तरह की तकलीफ सामने आ रही है तो उसमें अल्ट्रासाउंड जल्दी करवा लेना चाहिए ताकि बचपन में ही उसका पता चल जाए।
ठीक है,
तो इसके अल्ट्रासाउंड के जो है वो चूंकि साउंड वेव्स होती हैं तो इसके बार बार करवाने से भी इसके नुकसान नहीं है। बच्चे में मसलन मुख्तलिफ तरह की रेडिएशन, एक्सरे वगैरह ले लिया, सीटी स्कैन जो है इनके अगर खास जरूरत से या एक जो इसकी तादाद है उससे ज्यादा करते हैं तो वो बिलाखिर रेडिएशन है उसके नुकसान होते
हैं।
तो अब देखें यहाँ पे हमारे सामने स्क्रीन पे जो है वो तस्वीर भी है और हमारे यहाँ पे दो गुर्दे दिखाए गए हैं जिसमें हमारे दो गुर्दे होते हैं। अब उसमें अगर आप गौर करें कि दाएं तरफ और बाएं तरफ वो जो दोनों गुर्दे हैं उसका जो लेवल है वो बराबर नहीं है, तो ये भी एक जनरल नॉलेज के लिए बताते चलें कि जो दायां गुर्दा होता है वो बाएं गुर्दे की निस्बत थोड़ा सा नीचे होता है और इसकी वजह ये होती है कि इसके ऊपर लीवर होता है यानी जिगर, तो उसने उसको जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है रखा होता है। अब देखिए गुर्दों से वो नालियाँ निकलती हैं और ये यूरेटर है और आगे चल के नीचे जो ब्लैडर है ये जो जखीरे का काम करता है और फिर आगे उसके स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, जब ब्लैडर भरता है तो उसके बाद जब हाजत होती है तो पेशाब का इखराज। अगर अगली तस्वीर ले आएं तो उसमें हम बेहतर तौर पे उसको बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सुर्ख रंग में वो गुर्दों से निकलती हुई जो नालियाँ दिखाई गई हैं, इन नालियों की हमने बात की थी कि यहाँ पे ये उसकी जो ये खून की जो नाली है ये उस यूरेटर पे वहाँ पे अगर दबाव डालती है तो उसकी वजह से वो उसके तंग होने का खतरा होता है।
अब ये गुजर रही है
बिल्कुल एक जनरल सी तस्वीर है कि जिसमें हमारे जिस्म में उसकी लोकेशन बताई गई है कि हमारे जिस्म में गुर्दे होते कहाँ करके हैं और इसको पीछे से भी जो हमारी रिब्स होती हैं नीचे बिल्कुल पसलियाँ 11वीं 12वीं उन्होंने उसको एक तरह से पीछे से हिफाजत दी होती है और इसकी अगर लोकेशन दूसरे एनाटॉमी के लिहाज से भी देखा जाए तो जो हमारे वो थोरेसिक रीजन उसके आखिरी जो वर्टिब्रा है उससे नीचे और लंबर के जो है वो इब्तदाई 2-3 जो वर्टिब्रा हैं वहाँ करके ये होती है। और अगली तस्वीर में जो हम वाजी तौर पे उसको देख पाएंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो उसकी कहाँ पे होती है।
ठीक है,
अब इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है वो सारा मसला बनता है और वहाँ पे उसकी जो हाइड्रोनेफ्रोसिस गुर्दे में हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है वो वहाँ पे उसको अल्ट्रासाउंड के जरिए डिटेक्ट किया जाता है।
जी मैं चाहूंगी हमारे साथी जो अगली तस्वीर चला दो तो मेहरबानी होगी। जी
अब इसमें यहाँ पे एक और इब्तदाई, अब देखें ये तस्वीर भी आ गई है, यहाँ पे वाज़ह तौर पे उसको दिखाया गया है कि यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन, इसको PUG पेल्विक यूरेट्रो जंक्शन या इसको इस तरह पढ़ लें, तो ये यूरेटर और पेल्विस, ये पेल्विस ये वाली जगह यहाँ पे वो हाइड्रोनिफ्रोसिस लिखा होता लिखा गया है यहाँ करके इस हिस्से को, और ऊपर वाले जो हैं इसमें इसमें चूँकि इसका जो किडनी का गुर्दे का एक बेसिक फंक्शनल यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन होता है, और गुर्दों में तकरीबन 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन्स यही असल काम जो फिल्ट्रेशन का इसका सारा काम अंजाम दे रहे होते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पेल्विस में जमा होता है, और ये वो जगह है जहाँ पे ये इस जंक्शन पे इसकी ऑब्स्ट्रक्शन आती है और उसके बाद इसकी इलामात जाहिर हो रही होती हैं। और यहाँ पे ये भी बताते चलें कि जो गुर्दे की गुर्दे का एक मुतालिया होता है यानी किडनी की स्टडी, उसको नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अब चूंकि इसका जो बेसिक यूनिट है वो नेफ्रॉन है और इसके जो स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे कोई मसला बनता है तो इसको उसको नेफ्रोलॉजिस्ट हम कहते हैं, और फिर उसके बाद जो है यूरोलॉजी मेल फीमेल इसका जो सिस्टम होता है यूरिनरी सिस्टम, इसका इसकी जो स्टडी को कहते हैं कि मसलन यूरोलॉजी, और इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं यूरोलॉजिस्ट होते हैं। अब खुदा ना खास्ता बच्चों में किसी भी ख़ानदान में इस तरह का कोई मसला बनता है तो बहुत सारे अफराद को ये भी पता नहीं होता कि अब इस मसले के लिए हमने रजू कहाँ पर करना है। अब चाइल्ड स्पेशलिस्ट का उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसको तशखीस दें और उसके बाद उसके में मज़ीद अगर बेहतर अंदाज में हम उसकी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो ये किडनी के जो माहिर डॉक्टर होते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट इन लोगों के पास रजू करना चाहिए और ये बेहतर तौर पे उसकी तशखीस दे सकते हैं और उसके सारे इलाज में उसकी रहनुमाई कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब हमारी गुफ्तगू का ये आखिरी हिस्सा चल रहा है, तकरीबन हमारे पास 2.5 मिनट का वक्त रहेगा, 2 से 2.5 मिनट का, तो मैं चाहूंगी हम यहाँ पर इलाज और तशखीस दोनों पर गुफ्तगू करते हुए।
अब तशखीस पे जिस तरह हमने पहले अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे थे कि अल्ट्रासाउंड में जो जब बच्चा माँ के पेट में होता है वहाँ पे उसकी तशखीस हो जाती है, उसको उसको उसके बाद फिर उसकी मुख्तलिफ एक वक्फे वक्फे के साथ जो है उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और नज़र रखी जाती है कि इसका गुर्दा जो है वो कितने फ़ीसद काम कर रहा होता है। कोई 10% बदकिस्मत बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिसमें दोनों गुर्दे इस बीमारी में मुबतला हो सकते हैं, तो उसको मज़ीद कन्फर्म करने के लिए या उसकी मज़ीद बेहतर तशखीस के लिए न्यूक्लियर मेडिसिन इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है। MAC3 या रीनल फंक्शन टेस्ट होते हैं, उसमें वो परसेंटेज पता चल जाती है कि कितने फ़ीसद उसमें रेडियो एक्टिव जो है वो मटेरियल्स वो वेंद में डाले जाते हैं, फिर उसके बाद वो तस्वीर ली जाती है तो उसकी परसेंटेज का पता चल जाता है कि कितने फ़ीसद गुर्दा जो है वो काम कर रहा है। अगर तो वक्त के साथ साथ उसमें उसके जो परसेंटेज है उसमें बेहतरी आ रही है, यानी इस वक्त मिसाल के तौर पर 40% एक गुर्दा काम कर रहा है और बच्चा जब 1 साल का होता है उसमें वो 50 पे चला गया 60 पे चला गया, तो फिर उसकी इलाज की तरफ जैसे होता है सिर्फ नज़र ही रखी जाती है और उसके जो शदीद किस्म की इलामात होती हैं उससे मुहतात रहा जाता है और उसको सारे अपने काम जो हैं, क्योंकि जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका जिस्म उसके जो सारी साख्तें हैं वो बड़ी होना शुरू हो जाती हैं तो उसकी नालियाँ भी जो हैं वो खुल जाती हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता नाली उसी तरह उसी हालत में रहती है, अगर उसी हालत में भी रहे और वो भी एक उसको पॉजिटिव साइन कहा जाता है कि ताकि बदतर ना हो, तो अगर खुदा ना खास्ता अगर नाली जो है वो ज़्यादा छोटी हो रही है तो फिर ऑपरेशन की तरफ लेके जाया जाता है मामला, और फिर ऑपरेशन में इस हिस्से को जो जहाँ पे नाली तंग होती है उस हिस्से को निकाल के यूरेटर को जो है उसकी असल जगह पे उसको कनेक्ट किया जाता है और स्टंट डाल दिए जाते हैं ताकि ज़ख्म जो है वो सारा एक ख़ास मुद्दत एक दौरानिया दिया जाता है ताकि ज़ख्म वो बहबूद हो जाए ठीक हो जाए और उसके बाद एक छोटी सी सर्जरी के जरिए जो है उसको निकाल दिया जाता है।
सही डॉक्टर साहब, आखिरी में मैं पूछना चाहूंगी, हमारे पास चंद सेकंड का वक्त है, खास कुछ किस्म के खाने बच्चों को देने चाहिए, खाने का किस तरह से ख्याल रखा जाए, सब कुछ वो खा सकते हैं?
देखिए शुरू में तो देखिए 2 साल की उम्र तक बच्चों को माँ का दूध ही देना चाहिए, दूसरी मुख्तलिफ तरह की जो गजाएँ, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि किसी ख़ास किस्म के जिस तरह बड़े अफराद जो हैं वो कोई ख़ास गोश्त हो गया वो कहें कि नट्स वगैरह उनकी वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या मुख्तलिफ अवामल जिस तरह हमने बात की थी कि उसमें कैल्शियम के अज्जा जो हैं ऑक्सलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा हो जाती हैं और उसके बाद क्रिस्टल की फॉर्म, बच्चों में इन चीज़ों से तो नहीं होता, ये वाला जो मसला ہے, یہ کنجینیٹل یعنی پیدائشی طور پہ یہ مسئلہ سامنے آتا ہے, یا وہاں پہ کوئی انفیکشن وغیرہ ہو گئی یا دوسرا اس طرح کا, وہ اس کی شریان کے دباؤ کی وجہ سے اس طرح سے مسئلہ بنتا ہے.